आपका जो मुख्य प्रश्न है वो ये है कि प्राणों की चलायमानता में मन की चलायमानता काम है, मन की चलायमानता में इंद्रियों की चलायमानता काम है, और इंद्रियों की चलायमानता के कारण देह की ममता कायम है। तो विचार करने की बात यह है कि देह की ममता किसको हो रही है, देह की ममता में फंसा कौन है, मैं ही तो फंसा हूं। तो देह की ममता में मैं फंसा हुआ हूं, इस मैं को ही जीवात्मा या जीव या बुद्धि, महाजी ने तीन शब्द जो है वो इस्तेमाल किए हैं वाणी और संतविलास में, और अन्य शास्त्रों में भी यही शब्दावली यूज होती है। तो प्रश्न ये उठता है कि प्राणों की चलायमानता में मन की चलायमानता कायम है, तो इसका मतलब यदि मैं प्राणों की चलायमानता को सीमित कर दूं तो मन की चलायमानता भी सीमित हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इसका उल्टा भी होता है, मन की चलायमानता में प्राणों की चलायमानता कायम है, मन के अंदर किसी प्रकार में संकल्प का उठना बंद कर दूं तो प्राण भी स्थिर हो जाएगा। तो इसीलिए ईश्वर भक्ति के दो मार्ग हैं, क्योंकि महाराज जी जो दीक्षा देते थे, जो नाम देते थे, वो प्राण के साथ जपा जाता था। प्राण का अंदर आना, श्वास का अंदर आना और श्वास का बाहर जाना, आधा मंत्र जब श्वास अंदर जा रही है तब उसके साथ जपा जा रहा है, तो श्वास बाहर आ रही है तो बाकी हाथ जो है उसके साथ जपा जा रहा है, जिसको राजयोग कहते हैं या केवल योग मार्ग कह देते हैं। क्योंकि महाराज जी योग मार्ग की दिशा दिया करते थे, इसलिए वो योग मार्ग की बात ही लिखी हुई है यहां पर। लेकिन महाराज जी ने ही महामंत्र भी प्रकट किया है और उसको उस पर वाणी भी प्रकट हुई है, उसके प्रमाण स्वरूप में महामंत्र की महिमा की वाणी भी प्रकट हुई है, और वहां वो साफ लिख रहे हैं कि कलह कलेश सब दूर हुए, पाए ज्ञान तत् योग, मंगत तत् अक्षर नित गाइये, प्रभु दर्शन होए संयोग। तो ये साफ साफ है कि जो महामन का जाप करेगा उसके सारे कलह कलेश समाप्त हो जाएंगे। तो कलह कलेश क्या है, मन की चंचलता ही कलह कलेश है, मन के अंदर हजारों प्रकार के संकल्प का उठना, मन के अंदर जो संस्कार आपने बनाए हैं, इकट्ठे किए हैं, जैसा भी स्वभाव आपने इकट्ठा किया है, तो उसके अनुसार मन के अंदर विभिन्न संकल्प निरंतर उठते रहते हैं। तो मंत्र शक्ति से ये संकल्प आपके खत्म हो जाएंगे, जब मन के संकल्प खत्म होंगे, कलह कलेश सब दूर होने की बात है ना, इसका मतलब महामन के जाप से वो स्थिति आपकी आ जाएगी कि मन आपका शांत हो जाएगा। तो मन जब शांत हो गया तो बताइए प्राण क्या चलायमान रहेंगे, प्राण भी शांत हो जाएगा। जब प्राण की चलायमानता से मन की चलायमानता कायम है, मन जब शांत हो गया किसी भी मेथड से तो प्राण भी शांत हो जाएगा। इसीलिए जो व्यक्ति भी इस महामंत्र का या सिद्ध मंत्र का जो जाप करता है, धीरे धीरे उसके मन के अंदर जो संस्कार हैं वो कमजोर पड़ने लगते हैं, धीरे धीरे वो साफ होने लगते हैं, और इधर आपका जो जीवन है वो ईश्वर भक्ति के लिए व्यतीत होता है। जब ईश्वर भक्ति के लिए व्यतीत होगा तो आपका खान पान भी शुद्ध होगा, बातचीत भी शुद्ध होगी, व्यवहार भी शुद्ध होगा, मर्यादा में आप लोक व्यवहार करोगे, मर्यादा में आप जो है रहते हुए आप स्वास्थ्य कर्म करोगे, मर्यादा में रहते हुए ही आप जो है परमार्थ कर्म करोगे या सत्कर्म करोगे। तो ये जो आपका जीवन प्रक्रिया है ये आपको सतोगुण की ओर ले जाएगी, और आपका जो रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव आपका कमजोर पड़ेगा। और दूसरा, आप जो महामंत्र का जाप कर रहे हो अंदर, वो जाप आपके पुराने संस्कारों को, जो जन्म जन्मांतर के संस्कार बने हुए हैं, जो साथ लेके आए हुआ इस जन्म में भी बनाए आपने, पहले के भी बने हुए हैं, तो उन संस्कारों को आप तो जानते भी नहीं। तो संस्कारों की सफाई का काम वो ये महामंत्र ही करता है। और जैसे जैसे आपके संस्कार ये सतोगुण की तरफ बढ़ने लगेंगे या सतोगुणी संस्कार बनने लगेंगे, वैसे ही वैसे आपके मन के अंदर ये जो अशांति है ना, चंचलता है, ये भी कम होने लगेगी, कम होने लगेगी। और जब एक सर्टेन लेवल तक ये चंचलता आपकी कम हो जाएगी या मन का शोधन हो जाएगा, तो ये जो प्राण की गति है, जिसको विषम गति कहते हैं, कि 12-16 का इसकी ट्रेवलिंग कहते हैं, बाहर सांस का अंदर जाना बाहर जाना, ये 12-16 की गति में होता है। तो ये गति जो है, विषम गति जो है, ये इक्वलाइज हो जाती है, ये सम हो जाती है, अंदर बाहर कहाँ का आना जाना ये सम हो जाता है। तो ये गुरु मंत्र से भी होता है, जो राजयोग का मंत्र है, जो श्वास के साथ जपा जाता है, वहां तो श्वास पर अटेंशन रहेगा आपका, लेकिन ये जो महामंत्र है ये राजयोग का मंत्र तो नहीं है, ये मन में जपा जाता है, यहां प्राण पर ध्यान दिया ही नहीं जाता है। तो ये मंत्र आपके संस्कारों को शुद्ध करता है, और आपका जो दैनिक जीवन है, वो जब गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार आप व्यतीत करते हो, शुद्ध जीवन, सात्विक जीवन व्यतीत करते हो, तो और इधर सिमरन करते हो, तो धीरे धीरे ये मन की चंचलता आपकी कम हो जाती है, मन का शोधन आपका इतना हो जाता है कि आप के अंदर सतोगुणी वृत्ति स्ट्रांग हो जाती है। तो उस हालत में आपके प्राणों की गति सम हो जाती है। जैसे ही वो प्राणों की गति सम होती है, उस हालत में आपका जो ये नाभि चक्र है, जिसमें कुंडलनी शक्ति अभी एक्टिव नहीं, अभी नीचे के दो चक्रों में, मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र में वो एक्टिव है, जो आपके नीचे भोगविलास की तरफ आपकी वृत्ति जाती है। तो जब वहां से, जब आप सतोगुणी संस्कार आपके अंदर बनते हैं, तो ये वहां से कुंडलनी शक्ति वापस लौटती है, तो ये नाभि में एक्टिव होती है। और जब प्राण जब सम होते हैं, तो ये नाभि चक्र जो है आपका, मणिपुर चक्र जो है, ये खुल जाता है, तब कुंडलनी शक्ति इस चक्र से ऊपर उठना प्रारंभ होती है। तो महाराज जी साफ कह रहे हैं कि नाभ कमल है अचरज थाना, जामे वसया श्री भगवाना, जा से उपजे श्वास का थंबा, सुरती खेले खेल अचंबा। तो ये नाभ कमल जो है, ये अचरज स्थान है इस देह के अंदर, और उसमें भगवान बस रहे हैं। तो भगवान किस रूप में बस रहे हैं? कुंडलिनी रूप में बस रहे हैं। इसलिए महर्षि रमण कह रहे हैं कि कुंडलिनी, आत्मा और मंत्र और गुरु, ये एक ही चीज है, एक ही चीज के चार रूप है। तो इसमें से किसी का भी संग कर लो आप, तो मोक्ष आपको प्राप्ति हो जाएगी। तो अभी आप किसका संग कर रहे हो? महामंत्र का संग करते हो, सिद्ध मंत्र का संग कर रहे हो। वहां वो कह रहे हैं कि सिद्ध मंत्र और आत्मा एक चीज है। तो सिद्ध मंत्र का संग कर रहे हो अभी आप, तो सिद्ध मंत्र के कारण और आपके परहेज के कारण, गुरु आज्ञा का पालन करने के कारण, या यूं कहने की गुरु भक्ति के कारण, आपका जो मन की, आपके जो मन की चंचलता है, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो मन की चंचलता कम होती जा रही है, तो उसका असर कहां पड़ रहा है? आपका प्राण पर। प्राण की विषमता भी कम होती जा रही है, प्राण सम होता चला जा रहा है। और जब प्राण जैसे ही सम होता है, वैसे ही ये नाभि चक्र में ईश्वर की कृपा, ईश्वर का प्रेम, ईश्वर की शक्ति वो ऊपर उठने लगती है। उसका जो मूल स्थान है, जिसको हम 10वां द्वार कहते हैं, ये उस ओर धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो जो जीव है, यानी जो बुद्धि है, जो अनुभव करने वाली शक्ति है, जो नोइंग फैकल्टी है, वो अंदर अपने इस चीज को अनुभव करती है। ऐसी चीज है जो जीव उसका अनुभव करता है, तो वो भी दो रूपों में अंदर प्रकट होती है, या तो धारा के रूप में प्रकट होती है जिसको कुंडलनी कहते हैं, या नाद के रूप में प्रकट होती है जिसको साउंड कहते हैं। मोटे तौर पर वो साउंड ऐसी नहीं है जो कान से सुनी जा सके, वो गुरु कृपा से ही उसका अनुभव हो सकता है। इसीलिए जिसने गुरु आज्ञा पालन की है, गुरु का मंत्र जाप किया है, गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार उसने जीवन बनाया है, तो उसने गुरु भक्ति की है नहीं की है। तो इसीलिए ऐसे व्यक्ति के अंदर वो गुरु कृपा अवतरित हो जाती है, नाद रूप में या कुंडलनी रूप में। तो ईश्वर का संग आप अंदर तीन रूपों में कर रहे हैं, या मंत्र रूप में कर रहे हैं ईश्वर का संग, या कुंडलनी रूप में कर रहे हैं ईश्वर का संग, या नाद रूप में ईश्वर का संग अंदर कर रहे हैं। ये तीनों ही ईश्वर का संग है, लेकिन हम तुलना करते रहते हैं, कहते हैं कि नाद प्रकट हो जाए हमारे अंदर कुंडलनी प्रकट हो जाए, महामंत्र से का तो जाप हमसे होता नहीं। विचार करके देखो, कोई आठवीं क्लास पास विद्यार्थी है, कहता है कि काम तो मुझसे होता नहीं, बहुत काम करना पड़ता है, मुझे इंजीनियर बना दो, मैं इंस्पेक्शन क्या करूंगा। अरे तेरी क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन तो देख। तो आठवीं क्लास पास है और इंस्पेक्शन करना चाहता है, इंस्पेक्शन करने के लिए कोई योग्यता चाहिए नहीं चाहिए। तो तूने अंदर यदि कुंडलनी का संग करना है या नाद का संग करना है, तो उसके लिए कोई योग्यता चाहिए नहीं चाहिए। उसकी योग्यता यह है तेरे प्राण सम हो जाए, अर्थात मन की चंचलता, गुरु आज्ञा पालन करते करते तेरी मन की चंचलता कम हो जाए, इतनी कम हो जाए कि प्राण तेरे प्राण की गति सम हो जाए। तो वो क्वालिफिकेशन जब तुझे मिलेगी, तब अगली मंजिल तेरी शुरू हो। तो ये पूरा विज्ञान है, सत्पुरुषों ने जगह जगह इन चीजों को वर्णन किया है। हम लोग क्योंकि पूरी बात जानते नहीं है, इसलिए इच्छा करते रहते हैं, योग्यता तैयार नहीं करते। तो यहां कोई भी चालाकी आपके काम नहीं कर सकते। कोई ऐसा भी हो सकता है, उसको आप कहें पांच बार महामंत्र का जाप करो या एक घंटा महामंत्र का जाप करो, तो शायद एक हफ्ता ही जाप करे, अंदर उसके अंदर कुंडलनी जागृत हो जाए, उसके अंदर नाद प्रकट हो जाए। और कोई ऐसा भी मिल सकता है आपको, 10 साल जाप करे तब भी नाद प्रकट ना हो। तो आप कैसे निर्णय करोगे कि ईश्वर ने इस पर ज्यादा कृपा कर दी, इस पर कम कृपा की है? ईश्वर तो अन्यायकारी नहीं हो सकता। तो पूर्व जन्म में क्या संस्कार लेके आया है, कितनी मेहनत करके वहां से आया है, तो यहां किसी का काम तो 2 दिन में भी हो सकता है, दो दिन तो छोड़ो, 2 घंटे में भी हो सकता है, और किसी का 2 वर्ष में भी नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमारी मेहनत क्या बेकार जा रही है? तो रामकृष्ण परमहंस कह रहे हैं कि एक बार भी ईश्वर का लिया हुआ नाम खाली नहीं जाता। जिस पर आप गंदे कपड़े पर एक बार भी टिक्की आप छुआ दो, तो कुछ ना कुछ मैल की सफाई वो करेगी ही करेगी। लेकिन मैल यदि ज्यादा है तो कितना साबुन घिसना पड़ेगा। तो इसीलिए हमारे संस्कार कैसे हैं और हमारा दैनिक जीवन कैसा है, कितनी गुरु आज्ञा पालन कर रहे हैं, संसार के मार्गदर्शन के अनुसार चल रहे हैं या गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार चल रहे हैं, ये तुमको देखना होगा ना। केवल इंफॉर्मेशन जान लेने से शास्त्रों की उससे तो मार्ग तय नहीं होता। तो सत्संग में कोई 20 साल जाता रहे, कुछ नहीं होगा उसके अंदर। हो सकता है 2-4 ऐप छोड़ दे, लेकिन कुछ नहीं होगा उसके अंदर। तो जब तक गुरु की आज्ञा पूरी तरह से पालन नहीं होगी, ये अंदर की चीज है वो दुरुस्त नहीं हो सकती। तो ये जो हमारे अंदर कंफ्यूजन रहता है कि अरे भाई ईश्वर की भक्ति तो वो है जब नाद जागृत हो जाता है, ईश्वर भक्ति तो वो है जब कुंडलनी जागृत हो जाती है। भाई ईश्वर की भक्ति वैसी की वैसी ही है। महामंत्र आज आप जाप कर रहे हो तो ईश्वर की भक्ति वैसी ही है। ऐसे भी तो लोग हैं जो बड़े अच्छे थे, उनके अंदर कुंडलनी बचपन से जागृत थी, उनके अंदर नाद बचपन से ही जागृत था, लेकिन बाद में बड़े हुए वो नाद उनका बंद हो गए, ऐब में पड़ गए, शौकीन मिजाज हो गए। तो भाई ईश्वरी शक्ति वो कृपा क्या हमेशा बनाए रखेगी, चाहे पापी बन जाओ चाहे वो फिर आपके प्राणों की चंचलता बढ़ जाएगी, भोग बढ़ेगा आपका, प्राणों की चंचलता बढ़ेगी, प्राणों की चंचलता बढ़ेगी तो प्रभु कृपा भी आपके ऊपर कम हो जाएगी। इसीलिए यदि आपने ईश्वर को जानना है, उसको जानने की आपके अंदर इच्छा है, सत्संग सुनते सुनते शास्त्र पढ़ते पढ़ते आपके अंदर वो इच्छा जागृत हुई है, तो आपको गुरु की बात ही मानकर चलना पड़ेगा। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि प्रेमी कि त्रयोदश अक्षर मंत्र ये सर्व सिद्धि दाता, साफ साफ तो लिखा हुआ है, सर्व सिद्धि दाता है। सर्व सिद्धि का क्या मतलब होता है? मनुष्य के अंदर कोई भी कामना बाकी नहीं बचती। कामना ही तो असिद्धि है। संसारी लोग जो स्वार्थी लोग हैं वो कामना पूर्ति के लिए सिद्धियां अर्जित करते हैं, करते नहीं करते। कोई देवी दर्शन करने जाता है, कोई 1,00,000 बार कोई मंदिर जाप करता है मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाए तो मेरी मनोकामना सिद्ध हो जाए, बात एक ही है। तो सर्व सिद्धि दाता रहे, सर्व सिद्धि का मतलब तेरी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। सारी कामनाएं पूर्ण होने का मतलब कामना की निवृत्ति हो जाएगी। मनुष्य की सारी कामनाएं पूर्ण होने का मतलब होता है कामना की निवृत्ति। सब पूर्ण होंगे तो निवृत्ति होगी नहीं होगी। तो ये मंत्र में इतनी शक्ति है कि तेरी वासना को ही खत्म कर देगी जड़ से ही। लेकिन कब कंडीशन लगा रहे हैं वो, जो सिमरे नित प्रेम से मंगल पाए अपार। जो इसका प्रेम से निरंतर सिमरन करेगा वो उसका अपार कल्याण होगा। कल्याण का मतलब होता है मोक्ष, अपार का मतलब होता है लिमिटलेस। तो लिमिटलेस कल्याण क्या है? उसी का नाम है आत्मलीनता, उसी का नाम है ईश्वर प्राप्ति। तो इस मनुष्य को ये मंत्र उस स्थिति तक पहुंचाएगा। जब ये उस स्थिति तक पहुंचाएगा तो बताइए ये मंत्र की शक्ति से आपके अंदर कुंडलनी जागरण होगा या नहीं होगा, या नाद जागरण होगा या नहीं होगा। तो दसवें द्वार तक तो वही धारा ले जाएगी आपको, या नाद ले जाएगा या कुंडलनी शक्ति ले जाएगी आपको। चीज तो दोनों एक ही है। इसीलिए जब तक आपके अंदर ये विश्वास ही नहीं है कि गुरु मंत्र ईश्वर कुंडलनी एक ही चीज है, ये रामकुंज परमहंस भी ये कह रहे हैं, महर्षि रमण भी ये बात कर रहे हैं, और महाराज जी तो संतवास में लिख ही रहे हैं, साफ साफ लिख रहे हैं, नहीं कलह कलेश सब दूर होए पाए ज्ञान तत्व योग। ज्ञान तत्व तो ब्रह्म को कहते हैं ना, उससे तेरा योग होगा। और क्या चाहिए तुझे? आत्मा से तेरा मिलन होगा, उस ब्रह्म से तेरा मिलन होगा, या आत्मा में तो स्थित होगा, कुछ भी कह ले उसको। ज्ञान तत्व से तेरा योग होगा, ये मंत्र गारंटी, लिखित गारंटी दे रहा है, वाणी आपको लिखित गारंटी दे रही है। लेकिन हम संसारी लोग हैं ना, दुनिया की बातें सीख सीख के, कोई कहता है ये मंत्र जाप करो, कोई कहता है वो मंत्र जाप करो, है नहीं, मंत्र के पीछे पड़े रहते हैं। गुरु हमारा कोई है ही नहीं, गुरु नहीं है तो जैसा मन चाहे जीवन जिए, जैसा मन चाह रहे हैं आप, जैसा स्वभाव आपका जी रहो, और एडजेक्टिव खुद लगा देते मैं बहुत अच्छा आदमी। अरे ईश्वर मार्ग पर चलने के लिए कितना अच्छा होना चाहिए तुझे पता है क्या? जैसा तेरा स्वभाव है वैसे तूने निर्णय कर लिया मैं बड़ा अच्छा आदमी। इसीलिए गुरु ज्ञान के आगे तोड़ के देखना, आपने गुरु बनाएगा तो उसके ज्ञान से तुलना देखेगा ना, ज्ञान उसके गुरु का जो ज्ञान है उस आईने में अपनी शक्ल देखेगा कि कितने दाग अभी बाकी। तेरा गुरु ही कौन है? तो अपना गुरु तो खुद ही है। तो जो मन चाहे तो निर्णय कर ले, जो मन चाहे तो अपने आप को कह दो मैं बादशाह, बड़ी अच्छी बात। तो इसीलिए पूर्ण गुरु पर समर्पण करने से दुनिया डरती है कि करना पड़ेगा ना, फिर मैं सारी शास्त्र पढ़ना चाहता हूँ, गीता भी पढ़ना चाहता हूँ, रामायण भी पढ़ना चाहता हूँ, संदा विलास भी पढ़ना चाहता हूँ, और सबके अर्थ समझना चाहता हूँ, सब जगह सत्संग भी सुनता हूँ, खूब शौक है सत्संग सुनने का, समर्पण कहीं नहीं है मेरा। यदि तेरा समर्पण नहीं है तो तेरे ऐब छोड़ेंगे नहीं तुझको, क्योंकि कौन कहेगा फिर तुझे। यद्यपि गुरु को ईश्वर से अलग सत्ता नहीं है, जब महर्षि रमण खुद कह रहे हैं कि गुरु केवल एक है और वो परमेश्वर है, तो अलग सत्ता कहां से होगी गुरु की। महाराज जी कह रहे हैं सदगुरु तो अंतर में, अंतर तो जो है वो ईश्वर ही रमता है ना कि शरीर रमता है अंदर। तो गुरु ना नाम है ना रूप है, वो नाम रूप से मुक्त ईश्वरीय सत्ता है, लेकिन वो बाहर जो प्रकट हुई है हमारे मार्गदर्शन करने के लिए प्रकट हुई है। इसलिए गुरु का संसार में ना, ये ईश्वर कृपा है संसार के ऊपर। तो उस ईश्वर के आगे मैं समर्पण कर रहा हूं जिसने बोलकर ज्ञान दिया है, जिसने उस ज्ञान को अपने जीवन में अमल करके दिखाया है कि ये संभव है इसके अनुसार संसार में जीना। ऐसा नहीं है गुरु को क्या पता, आजकल तो मॉडर्न दुनिया है, आजकल किस आदमी के पास 2 घंटे सुबह 2 घंटे सायंकाल स्मरण करने का समय होगा। हम तो यही कहेंगे महाजी के समय में तो लोग खाली हुआ करते थे, ना पढ़ाई लिखाई थी ना कुछ काम धाम था, अपने थोड़ी बहुत खेती कर ली अपने, गुजारा हो गया, समय होता था कर लेते थे। आजकल समय कहाँ है, तो यही कहेंगे ना। आज के वक्त में महाजी होते तो नियम बदल देते अपने, हम यही बातें करेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य भोग विलास है, संसार में सफलता है, ना कि ईश्वर मार्ग में सफलता, ये हमारा लक्ष्य नहीं। और गुरु आदिकाल से एक ही जैसा होता है, ईश्वर में कोई भेद आया क्या, सतोगुण रजोगुण तमोगुण में कोई भेद आया क्या, जिससे प्रकृति की रचना है ऐसी। तो इसीलिए हमारी बुद्धि जो ये संसारिक बुद्धि है, जब तक ये गुरुमुख बुद्धि में नहीं बदलती कि हर पल इसने गुरु के हिसाब से सोचना है, गुरु के हिसाब से चलना है, चाहे पूरी दुनिया में तुझको 10 आदमी चलते हुए मिले उस मार्ग पर, लेकिन वो 10 ही ठीक चल रहे हैं, बाकी सारी पॉपुलेशन गलत रास्ते पर जा रही है। ये बहुमत से ये बातें, इनसे बहुमत से निर्णय नहीं होते इन बातों से। तो जो भी गुरुमुख बुद्धि धारण करेगा या गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार चलना शुरू करेगा, अपनी आध्यात्मिक यात्रा तय करेगा, उसको ही अंदर ईश्वर का अनुभव होगा। तो आज के दिन कोई व्यक्ति ऐसा है जो महामंत्र को ईश्वर जानकर, जैसा कि वाणी कह रही है, महामंत्र को गुरु जानकर, महामंत्र को ईश्वर शक्ति जानकर वो उसका संग कर रही है। कोई ऐसा है जो जिसके अंदर ईश्वर कृपा से उसके अंदर नाद ऑलरेडी जागृत है तो वो उसका संग कर रहा है। किसी के अंदर कुंडलिनी की धारा जागृत है तो वो उसका संग कर रहा है, लेकिन तीनों एक ही चीज का संग कर रहे हैं, इसमें भेद कुछ भी नहीं। जैसे कि कोई बच्चा 6 क्लास में पढ़ रहा है तो पढ़ाई तो कर रहा है नहीं कर रहा है, कोई इंटरमीडिएट में पढ़ रहा है पढ़ाई कर रहा है नहीं कर रहा है, कोई PhD की पढ़ाई कर रहा है पढ़ाई कर रहा है नहीं कर रहा है। तो 6 क्लास का व्यक्ति यदि नकल करने लगे उसकी इंटर वाले की तो जंप लगा सकता है कभी वो उसकी आज की पढ़ाई उतनी ही कीमती है जितनी की इंटर वाले की कीमती है। जैसे वो आगे बढ़ रहा है ऐसे वो भी आगे बढ़ रहा है। तो मैं जहां खड़ा हूं मैंने वहां से कैसे आगे बढ़ना है ये मैंने सोचना है। तो जो 6 क्लास का विद्यार्थी है वो भी अपने जो भी उसका गुरु है उसके हिसाब से पढ़ाई कर रहा है, जो इंटर का विद्यार्थी है वो जैसा गुरु है उसके हिसाब से वो पढ़ाई कर रहा है, PhD वाले का भी गुरु है वो उसके हिसाब से पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई करने का जो एक्शन है वो तो सेम है ना। तो इसीलिए जो ईश्वर आराधना है, ईश्वर की भक्ति है, ईश्वर की उपासना है, वो तो एक ही जैसी है, चाहे वो नाद उपासना है चाहे वो कुंडलिनी उपासना है चाहे वो मंत्र उपासना है, उसमें भेद कहां है। तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन अंतर इतना ही है कि वो आगे बढ़ चुका है मेहनत पहले कर चुका, तूने अब यात्रा शुरू की है तो अब मेहनत करना शुरू कर रहा है, तो उसकी नकल कैसे कर सकता है? इसीलिए ये जो सत्संगी लोग होते हैं ना, ये मंत्र को नेगलेक्ट करने लगते हैं। कहते हैं मंत्र तो हम जाप करते हैं, हमें 5 साल तो हो गए, अंदर तो कुछ बना नहीं हमारा। अब बताओ कौन दिखाएगा क्या बना तेरा? मैं खुद अपने एक्सपीरियंस की बात करूं यदि, तो मुझे याद है सन 77 में मैं यहां पर आया था पहली बार, और दिल्ली में डिफेंस सर्विस करता था उस टाइम। तो उस टाइम मुझे किसी ने नाम दे रखा था जो श्वास के साथ जपा जाता है, उसका मैं जाप करता था। खैर बाद में जब वाणी पढ़ी, समतावलास पढ़ा, अन्य शास्त्र पढ़े, सत्पुरुषों की बातें पढ़ी, तब पता लगा भाई ये जो प्राणापान की साधना है जिसको राजयोग की साधना कहते हैं, ये तो केवल गुरु ही आपको इस पर लगा सकता है। अपनी मर्जी से आप नहीं, किसी से सीख के चले आए आप करने से, वो ये नहीं कर सकते आप, क्योंकि फिर इसमें वो शक्ति नहीं है जो गुरु शक्ति से इसमें आपका आगे विकास होता है। तो बाद में पता लगा ये महामंत्र जो है ये गुरु मंत्र है और इसकी वाणी प्रकट है। जब उसको पढ़ा समझा, फिर महाराज जी की जीवनी भी मेरे गुरुदेव छपी तो वहां भी पढ़ा, तब समझ आई बात। तो फिर इन सत्पुरुषों की बातें पढ़ी, रामकृष्ण परमहंस की, महर्षि रमण की, तब निर्णय हो गया कि हम गलती कर रहे थे। फिर महामंत्र का जाप शुरू करा। तो जब ये जाप करते करते एक चेंज अनुभव की हमने, कि पहले जब जाप करने बैठते थे तो संसार के भोग मन को खींच लेते थे, और जब जाप करने का ये लंबा अभ्यास हो गया तब एक चेंज मन के अंदर नजर आई, कि मन के अंदर संस्कार तो भोगों के हैं और उसके कारण उनकी याद आती है, लेकिन जो मन, जैसे दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली की तरफ खींच जाता था ना, तो मन खींचता नहीं है। मन के अंदर वो संकल्प तो उठते हैं, लेकिन जो पहले उसमें अट्रैक्शन था वो अट्रैक्शन बहुत वीक हो गया। अब ये कई वर्षों के अभ्यास के बाद ये चीज हमको नजर आने लगी कि ये चेंज है। जब हमने देखा कि भाई क्या डेवलपमेंट हुआ, पता लगा ये चेंज तो है, तो पहले कितना अट्रैक्शन था इनके अंदर, अब तो अट्रैक्शन संस्कार है भी वीक है, लेकिन याद तो आ रही है उनकी, लेकिन उसमें अट्रैक्शन नहीं है, अपना सिमरन भी हो रहा है और मन के अंदर वो संकल्प भी चल रहे हैं, लेकिन वो फोर्स उसमें गायब। तो जो भी साधना करेगा गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार, तो उसको चेंज नजर आएगी इसके अंदर। और ये कोई ये समझे कि प्राणों की गति यदि सम हो जाती है तो संकल्प उठना बंद हो जाता होगा, ऐसी बात नहीं है, वो यही होता है इसके अंदर। उसके अंदर संकल्प वीक पड़ जाते हैं, उसका जो अट्रैक्शन है, उनका जो खिंचाव है वो वीक पड़ जाता है। वो जब वीक पड़ता है तो प्राण की गति भी सम होने लगती है। तो वो उसका आपके पास कोई स्केल है नहीं नापने का भी, तो इसलिए उसका एक ही स्केल होता है कि प्राण की गति आपकी सम हो जाती है, जिसमें कोई आपकी चालाकी होशियारी काम नहीं कर सकते। वो आपको आपके अंदर विवेक वैराग्य यदि आपके अंदर पैदा नहीं हो रहा है, आपको अपनी जिंदगी की समझ नहीं आ रही है, केवल ऊपर ही ऊपर सत्संग सुन के आप जो है वो खुश हो रहे हो कि मैं सब जानता हूं, तो आपके अंदर ना विवेक आएगा ना वैराग्य आएगा। बातें तो सब जान कर लोगे आप विवेक वैराग्य, लेकिन वो आएगा नहीं आपके अंदर। जब तक वो आएगा नहीं, मन का खिंचाव कम नहीं होगा, फिर वो चेंज आपको नजर नहीं आएगी। तो ये सारा एक कॉम्बिनेशन है पूरा पूरा। इसीलिए गुरु मंत्र की बात की जाती है, इसीलिए सिद्ध मंत्र की बात की जाती है। तो जब मैं गुरु आज्ञा पालन करके वो उपासना करता हूं तो धीरे धीरे मेरा जो दैनिक जीवन है वो पांच महाजी के नियम है उसके साथ जब शुद्ध होता है और उस प्रोग्राम पर मैं चलता हूं तो एक दिन मेरे मन की इतनी सफाई हो जाती है कि प्राणों की गति मेरी सब मन के कारण हो जाती है। तो इसीलिए उपासना की दो ही पद्धतियां हैं, इसीलिए वो गीता में कहते नहीं कि यज्ञाणाम सब यज्ञो जप यज्ञो अस्मि, यज्ञाणाम जप यज्ञ, यज्ञों में जप यज्ञ मैं स्वयं हूं। तो जप यज्ञ क्या हुआ, ये मंत्र का ही तो जप होता है ना। तो आप इसको भक्ति मार्ग नाम रख लीजिए, प्राण के साथ जो साधना है उसको नाम योग मार्ग रख लीजिए, नाम आप दो रख लीजिए उसके, लेकिन अंदर जो चीज आपको अनुभव होगी, अंदर जो चीज प्रकट होगी वो एक ही है, चाहे आप योग मार्ग से चलो, चाहे आप भक्ति मार्ग से चलो, चाहे जप यज्ञ के मार्ग से चलो, चाहे आप प्राणापान की साधना से चलो, बात वो एक ही होगी। तो ये जो प्रक्रिया है फिर आपके अंदर की, फिर वैसी ही चलती रहती है जैसे कि वो आगे वो प्राणापान की साधना आपको आगे ले जाती है, ऐसी ये क्रिया भी आपको आगे ले जाती है, आगे उसका रिजल्ट भी एक ही है, आगे उसका अनुभव भी एक ही है और अंदर की स्थिति भी एक ही है। उसका राज इसी में छिपा हुआ है कि आपने गुरु आज्ञा का पालन करना है, गुरु के प्रति आपने समर्पित होना है, क्योंकि मार्ग आगे चल के बड़ा बारीक हो जाता है। अभी तो आपसे ये कहा जाता है कि सत्कर्म करो, परोपकारी कर्म करो, फिर आपको आगे ये कहा जाता है कि परोपकारी कर्म करके ये मत समझो कि मैंने किया है, प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हुई, और उस परोपकारी कर्म का भी जो परिणाम निकलेगा, जो फल मिलेगा, वहां भी तूने नजर नहीं रखनी, प्रभु तूने जो फल देना था वो दे दिया, मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। तो पहले सत्कर्म करने की बात करते हैं, बल्कि शुरू करते हैं पहले तू पाप कर्म का त्याग कर, जो तू जानता है तेरे ये कर्म अशुद्ध है उनका त्याग कर, शुद्ध कर्म करने की कोशिश कर, फिर कहते हैं तू परोपकारी कर्म करने की कोशिश कर, यानी सत्कर्म करने की कोशिश कर, फिर कहते हैं तू निष्काम कर्म कर, तू करता भी नहीं है तू भोगता भी नहीं है। देखिए कि आपका देखिए कर्म के उसमें भी तो अंतर आ रहा नहीं आ रहा है। तो गुरु को आपने धारण ही नहीं किया, यदि गुरु की बात आपने बारीकी से पढ़ने की समझने की कोशिश ही नहीं की है तो फिर गलतियां करता रहेगा, तो अपने निश्चय के अनुसार चलेगा, तो अपने निश्चय से जैसे भी जैसा स्वभाव कर, तो तेरी प्रगति में बाधा आएगी। इसलिए समर्पण जरूरी है, ये सारे ऋषि जानते हैं, इसलिए वो कहते हैं किसी गुरु के आगे तो समर्पण कर। और गुरु कौन सा, ब्रह्म ऋषि जो खुद ईश्वर है, शास्त्रों का ज्ञाता नहीं, शास्त्रों को एक ज्ञाता को गुरु नहीं कहते। ज्ञान गुरु क्यों होता है, वो ज्ञानी है, ज्ञानी क्यों है, वो ज्ञान रूप परमेश्वर में वो स्थित है, वो खुद ही ज्ञान रूप परमेश्वर है। तो वो ज्ञान उसका नाम है अनुभव, उस ज्ञान को क्या कहते हैं, अनुभव। बुकिश नॉलेज को ज्ञान हम लोग कहते हैं, लेकिन अध्यात्म ज्ञान का मतलब होता है अनुभव। तो जो उस अनुभव में स्थित हुआ है इसीलिए उसको ज्ञानी कहते हैं, ना कि शास्त्रों का ज्ञाता है। शास्त्र उससे प्रकट हो रहे हैं, उसने शास्त्र क्या पढ़ने, हर बात उसकी शास्त्र का वचन है। तो इसीलिए आज हम यदि महामंत्र का जाप ही कर रहे हैं तो हमें यह नहीं समझना चाहिए कि हम उससे नीचे हैं या उससे छोटे आदमी हैं जो अंदर नाद का संग कर रहा है, नाद का को मेडिटेट कर रहा है, जो कुंडलनी का अंदर संग कर रहा है, कुंडलनी को मेडिटेट कर रहा है, वो हम उससे छोटे हैं, ना ना ना, हम छोटे नहीं हैं। अरे कोई बच्चा यदि, मैंने कहा ना कि पांचवी क्लास में पढ़ रहा है और एक पीएचडी कर रहा है, तो पीएचडी से छोटा नहीं है वो जहां कुदरत ने उसको रखा है उसके लिए वही क्लास है। उसमें यदि पूरा पुरुषार्थ कर रहा है तो उसकी कीमत पढ़ाई की उतनी ही है जितनी पीएचडी वाले की है, दोनों में कोई अंतर नहीं। बस अंतर है तो कहां है कि ये मन लगा के पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। पीएचडी वाला मन लगा के पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। यदि दोनों ही मन लगा के पढ़ रहे हैं, ईमानदारी से पूरा अपनी पढ़ाई को जस्टिफाई कर रहे हैं, तो दोनों एक जैसे, कोई अंतर नहीं देना। इसीलिए यदि हम जाप की स्थिति में हैं, महामन का भी जाप कर रहे हैं, तो अपने आप को छोटा ना समझे, हीन ना समझे। हम गुरु की निगाह में वैसे ही हैं जैसा कि आगे पहुंच चुका व्यक्ति, दोनों में कोई अंतर नहीं। दोनों ही अपना पूरा पुरुषार्थ कर रहे हैं, दोनों की मन के अंदर ईश्वर के प्रति लगन है, प्रेम से ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं, तो रिजल्ट हमको जो मेहनत हमारी है वो अंतिम स्थिति पर ले जाएगी। इसलिए प्रेम से आप ईश्वर की याद करो और सांसारिक जीवन को छोटा सिंपल करने की कोशिश करो। आपको झूठ बोलने की, मकारी करने की, किसी को धोखा देने की, बेईमानी करने की जरूरत ही क्या है? आपकी जरूरतें यदि कम है, ईमानदारी से थोड़ी कमाई करके गुजारा करोगे? जो करने वाला ईश्वर है, मैंने निष्काम कर्म करने हैं, सोचोगा निष्काम होना है। निष्काम जब हो जाओगे तब भी तो ईश्वर का, ईश्वर पर डिपेंड करोगे। अरे समाधि लग गई तब भी तो ईश्वर पर निर्भर करोगे? समाधि में तो शरीर का भी होश नहीं होगा। कहीं गुफा में ही बैठे हुए मान लिया समाधि लग गई तो शेर खा जाएगा, सांप खा जाएगा, आपको कुछ पता है? आपको तो शुरू से ही आपको ये अभ्यास सिखाया जाता है कि ईश्वर पर निर्भर होना सीखो। सकल जगत का कर्ता जानो एक भगवान, वाणी इसलिए गाइड कर रही है। तो शुरू से ही यदि आप इसको इसको अमल में लाएं, इस पर ध्यान रखें, तो आप देखो आपने कैसी निर्भयता आएगी, निश्चिंतता आएगी। आप कहोगे पता नहीं मैंने कम कमाई की तो दुनिया की कंपटीशन में पिछड़ तो नहीं जाऊंगा, कहीं पता नहीं मेरे बच्चे जो हैं पढ़ भी पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे, ऐसे जो संशय करते हैं हम लोग, तो हर मनुष्य अपना प्रारब्ध लेके पैदा हुआ है, उसके प्रारब्ध के अनुसार ईश्वर उसकी रचना को चला रहा है। मैं नहीं चला रहा हूं, ईश्वर चला रहा है। तो डाउट क्यों करते हैं? डाउट इसलिए करते हैं कि ईश्वर विश्वास पक्का है नहीं हमारे अंदर, घबरा जाते हैं। तो गुरु जैसा कह रहा है वैसा करो। संसार में यदि विफल हुए तो विफल तो याद रखो डकैत भी हो जाते हैं, विफल तो बिजनेसमैन भी हो जाते हैं, विफल तो सर्विसमैन भी हो जाते हैं, विफल तो स्टूडेंट्स भी हो जाते हैं। कौन विफल नहीं होता? सारे सफल होते हैं क्या? तो मैं ईश्वर भक्ति करके इस संसार में यदि विफल भी हो गया तो मेरी वो विफलता है या सफलता है? जो संसारी आदमी संसार में विफल हो गया उसका जिंदगी बर्बाद वैसे ही हो गई, बेचैनी वैसे ही थी और विफल हो गया तो और बेचैनी बढ़ जाएगी, हो सकता है सुसाइड कर ले, पता नहीं क्या करेगा। लेकिन मैं भी संसार में विफल हुआ तो मैं करतार में तो सफल हूं, दुनिया का हाईएस्ट दर्जे का काम तो मैं कर रहा हूं, तो मेरा जीवन विफल काम हुआ? किसी सत्पुरुष का जीवन विफल होते देखा है कभी आपने? संसार में वो विफल ही रहे, लेकिन हम उन्हीं को पूछते हैं, उन्हीं की याद करते हैं, उन्हीं का नाम लेते हैं और संसार में उन्हीं का नाम होता है। इसीलिए यदि जो कुदरत के नियम है, जो शास्त्र में जिनका वर्णन है, जो ईश्वर के नियम है, ईश्वर का जो कानून है, उसके हिसाब से यदि हम निश्चय अपना नहीं बदलेंगे तब हम भयभीत रहेंगे, संसार में सदमार्ग पर चल नहीं पाएंगे, बार बार संसारियों की बातों में आ जाएंगे, कहें तो किस गुरु की बात मान रहा है, वो क्या जाने संसार कैसे चलता है, तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ये ना समझे कि मैं ईश्वर मार्ग पर चलूंगा तो हर काम में सफलता मिलेगी, भूल कर भी ये ना समझे। आपको सफलता विफलता संसार में आपके प्रारब्ध के अनुसार मिलेगी, इसका ईश्वर भक्ति से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। ईश्वर भक्ति का संबंध यहां पर मात्र इतना ही है कि तू यदि ईश्वर भक्ति नहीं करता तो संसार के बदले हालात में तेरी मानसिक बेचैनी बहुत बढ़ जाती। अब यह तो धैर्य पूर्वक उस कर्म चक्र को वो ईश्वर के अधीन समझ रहा है, जो भी नतीजा तो जो सामने आ रहा है उसको ईश्वर का हुक्म समझकर तू संतोष के साथ उसको सहन कर रहा है, तेरे अंदर धैर्य बना हुआ है। देह तेरी ईश्वर ने जीवित रखनी है, जब जीवित रखनी है इसको रहने की जगह भी देगा, खाने को भोजन भी देगा और पहनने को कपड़ा भी देगा। कैसा देगा वो बात छोड़ो, लेकिन देगा वो। शरीर की रक्षा करना ईश्वर का काम है। और जैसा ईश्वर ने अवतार लेकर गुरु बनकर जो मार्गदर्शन किया है, उस मार्गदर्शन के अनुसार मैंने शारीरिक जीवन जीना और आध्यात्मिक जीवन जीना, ये मेरा काम। यदि मैं अपने काम के प्रति ईमानदार हूं तो याद रखिए आपकी सतमार्ग की प्रगति को कोई रोक नहीं सकता। आपको अपनी इस देह के अंदर ही अंतर्यामी ईश्वर का दर्शन होगा, उसका अनुभव होगा, इस बात की गारंटी सत्पुरुष खुद लेते हैं। महाजी खुद कह रहे हैं, सतगुरु तो अंतर्गम पल पल करे पुकार, तू आज्ञाकारी होए के घटका पाट भाट। हर पल तुझे गुरु अंदर बैठा हुआ पुकार रहा है, तू आ मेरी तरफ। यदि मैं उसकी आज्ञा पालन करके चल रहा हूं तो अपना वो घटका पाठ नहीं खोलेगा क्या? वो बंद रखेगा उसको, वो तो प्रतीक्षा कर रहा है मेरी। तो इसलिए निराश ना हो, सदगुरु की बात मानकर उसको अंतर्यामी समझकर उसके मंत्र का जाप करें, निश्चिंत होकर प्रेम से और संसारी जीवन जो शुद्ध करें, सत्कर्म करने की कोशिश करें, वो भी निष्काम रूप में, तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वार्थ।